नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून में 3 दिवसीय भारतीय संरक्षण सम्मेलन शुरू। देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अल्मोड़ा में नवनिर्मित बाल वाटिका और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंग्रेजी भाषा केंद्र का शुभारंभ। हल्द्वानी में एक कार के नहर में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में आज भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक शोध, नीति निर्माण और सामुदायिक भागीदारी को एक मंच पर लाना है। एक रिपोर्ट।
के पहले दिन आज सुबह से ही विविध सत्रों में संरक्षण से संबंधित प्रस्तुतियां की जा रही हैं। शोधार्थी स्पीड टॉक्स के जरिए बंदरों की बढ़ती संख्या, पक्षी पहचान में मशीन लर्निंग, आक्रामक प्रजातियां और जलीय जीवन पर शोध साझा कर रहे हैं। 4 समांतर सत्रों में वन्य जीव विज्ञान, जलतंत्र, भालू और लंगूर की पारिस्थितिकी तथा वन्य जीवन स्वास्थ्य पर चर्चा प्रस्तावित है। आज ही सरकार की प्रमुख पहलें भी साझा की जाएंगी, जैसे राष्ट्रीय जीव जंतु पोर्टल, नागरिक भागीदारी वाले हरित अभियान और हिमालयी पारिस्थितिकी संरक्षण। कल जैव विविधता, जल जातीय जीवन और जलवायु परिवर्तन पर व्याख्याएं होंगी। समुद्री जैव विविधता और संवेदनशील प्रजातियों पर शोध प्रस्तुत किए जाएंगे। बिग कैट संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सत्र भी होगा, जिसमें 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण की चुनौतियों और नवाचारों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य शोध, नीति और तकनीक को जोड़कर भारत व वैश्विक दक्षिण में संरक्षण को मजबूत बनाना है। गौरतलब है, ये सम्मेलन 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्वर्ण जयंती के मौके पर शुरू हुआ था और अब ये संरक्षण विज्ञान और युवाओं को जोड़ने का एक प्रमुख मंच बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने नवनिर्मित बाल वाटिका और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंग्रेजी भाषा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में जिले के 11 विकास खंडों के खंड शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में उचित शिक्षा प्रबंधन को लेकर बाल विकास विभाग के साथ सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए।
डाइट हमारे शैक्षिक जगत में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये शिक्षकों के प्रशिक्षण का स्थल है। यहाँ पूरे जिले की पॉलिसी, किस तरह के रिसर्च होंगे, क्या काम हो रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जो है हम लोग जानकारी करते हैं, उसका अध्ययन होता है। इसलिए हम एक एक बिंदुओं पे जो है हम लोगों ने इस पे वार्ता की और जनपद में नए प्रयोग भी कर रहे हैं हम लोग। जैसे जितने जियोग्राफी के टीचर हैं उनको GIS मैपिंग की, GIS की जानकारी देना, ये बिल्कुल यूनिक होगा पूरे इंडिया में। पेस अकेडमी से जो काम कर रहे हैं या स्वयंसेवक जो हम लोगों ने खनन न्यास से रखे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डाइट को, हमने ये भी कहा कि उसका अध्ययन करें।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंग्रेजी भाषा केंद्र की समन्वयक डॉक्टर हेमलता धामी ने कहा कि संस्थान में स्थापित एक्सीलेंस सेंटर एक शैक्षणिक हब की तरह कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों, घरों और राज्य में एक समृद्ध भाषा और संवाद का वातावरण बनाना है। उन्होंने कहा कि इस सेंटर ने गत वर्ष कक्षा 10 और 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किए, जो आगे भी छात्रों को स्पष्ट दिशा प्रदान करेंगे।
जो एक्सीलेंस सेंटर हमने खोला हुआ है, ये एक्सीलेंस सेंटर हमारा काम कर रहा है एक एजुकेशनल हब की तरह सभी लोगों के लिए। वी आर ट्राइंग टू इनकल्केट द एनवायरनमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, गुड लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन आर स्कूल्स, इन आर होम्स एंड एज वेल एज इन आर स्टेट ऑल्सो। हमने लैंग्वेज लैब स्टेब्लिश करी है। इस लैंग्वेज लैब में हम बहुत सारे अलग अलग तरह के LTM पे बात करते हैं कि कैसे वो बनाया जाए। पॉडकास्ट हम यहाँ से लॉन्च करने वाले हैं कि किस तरह से टीचर अपने एब्सेंस में भी बच्चों को एक रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकता है।
भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से उत्तरकाशी जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मालती में मातली में एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों को बीआईएस की कार्यप्रणाली, उपभोक्ता अधिकारों और आईएसआई चिन्हित उत्पादों की उपयोगिता के साथ ही सुरक्षा उपकरणों में प्रयुक्त मानकों की जानकारी देना था।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में आज सुबह अग्निशमन कार्यालय के निकट एक कार के नहर में गिरने से एक बच्चे सहित चार लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल तीन अन्य लोगों का उपचार चल रहा है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से पर्वतीय इलाकों में सड़क मार्ग बाधित हुए हैं, जिन्हें खोलने के लिए संबंधित जिला प्रशासन जुटा है। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच राजमार्ग बंद होने के कारण केदारनाथ पैदल यात्रा को सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है। साथ ही तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में ठहराया गया है। पुलिस के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और केदारनाथ से गौरीकुंड के बीच सतर्कता बरती जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि कल रात से ही केदारनाथ में तेज बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि पैदल मार्ग के सभी पड़ावों पर सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरतने को कहा गया है। वहीं उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग नौ कैंची के पास भूस्खलन स्थल पर राहत व बचाव अभियान आज फिर से शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ टीम द्वारा भूस्खलन क्षेत्र में स्निफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। भूस्खलन स्थल पर मलबा और पत्थरों को हटा दिया गया है। तीर्थयात्रियों को यमुनोत्री धाम के लिए जानकी चट्टी से धीरे धीरे भेजा जा रहा है, जो यमुनोत्री से वापस आते समय वैकल्पिक मार्ग से होते हुए जानकी चट्टी पहुंचेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग स्थानों पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग के वॉचर तैनात किए गए हैं। उधर बागेश्वर जिले में सभी क्षेत्रों में कल रात से बारिश हो रही है। भूस्खलन से जिले के 16 आंतरिक मोटर मार्ग बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गरुड़ मोटर मार्ग में हरिद्वार छीना के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटने से दो लोग घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के शेष जिलों में गर्जन के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पंतनगर विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. ध्यानपाल सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही डॉ. ध्यानपाल सिंह पार्क का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हरित क्रांति का बिगुल बजाने वाले पद्मश्री डॉ. ध्यानपाल सिंह ने हरित क्रांति के माध्यम से पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राज्यपाल ने कहा कि डॉ. सिंह ने पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 9 वर्षों तक कार्य किया। कुलपति के पद पर रहते हुए उन्होंने बीजों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष 1969 में तराई विकास निगम की स्थापना की, जिससे पूरे देश में बीजों के क्षेत्र में क्रांति आई।
पद्मश्री डॉक्टर ध्यानपाल सिंह जी का बैकग्राउंड आईएएस का था। तीसरे हमारे वाइस चांसलर साहब थे यहाँ पर, और उन्होंने उस वक्त में जो बदलाव लाए, उस वक्त के अंदर में जो उन्होंने हरित क्रांति लाई और पूरे देश ने देखा, वो हमारे लिए प्रेरणा है कि किस प्रकार कृषि के क्षेत्र के अंदर में एक क्रांति लाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने जिस प्रकार से एक ब्रिज की क्रांति उस वक्त में लेके आए, मैं तो कहूंगा कि उनका जो तराई डेवलपमेंट जो निगम है, उसका जो उन्होंने आधारशिला रखी, उसी का फल है कि इतनी प्रगति हुई।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में 3 दिवसीय भारतीय संरक्षण सम्मेलन शुरू। देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अल्मोड़ा में नवनिर्मित बालवाटिका और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंग्रेजी भाषा केंद्र का शुभारंभ। हल्द्वानी में एक कार के नहर में गिरने से 4 लोगों की मृत्यु और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।